نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں اور خوبیاں اتنی ہیں کہ گنی نہیں جا سکتی. اللہ تعالیٰ اپنی کائنات میں ایک خالق اور ایک مالک ہونے کے ناطے سے یکتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ ہونے کے ناطے اور اللہ تعالیٰ کا ایک غلام اور سب سے بڑھ کے جو اللہ تعالیٰ نے کام ان کو دیے اس ناطے سے یکتا ہیں. ہمیں آپ کو کیا کرنا ہے؟ ان ساری باتوں کو سنتے سناتے وقت اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے نبی کے بارے میں جانتے ہوئے ہمیں یہ خوشی ہونی چاہیے کہ چلے ہم نے عمر کے کس حصے میں بھی یہ جاننا شروع کیا، لیکن اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اب ہم اپنی اگلی زندگی میں اپنے آپ کو ان کے مطابق بنائیں گے. ابھی تک جو باتیں ہم نے کی تھیں وہ زیادہ وہ تھیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انفرادی طور پہ کچھ یونیک خوبیاں دی گئیں. اب اوور آل کچھ باتیں آپ کے بارے میں پڑھیں گے کہ آپ کی عادات کیسی تھیں، آپ کے رویے کیسے تھے. ویسے تو انشاءاللہ یہ ٹاپک بک کے اندر بھی جب آئے گا تو آپ کو وہاں بھی تھوڑا سا ملے گا، لیکن صرف آپ کو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امیجینیشن دینے کے لیے یہ باتیں یہاں تھوڑی سی شیئر کروں گی. اس وجہ سے کہ جب تک ہم کسی کے بارے میں جانتے نہیں ہیں ہمیں اس سے محبت نہیں ہوتی، سچی بات ہے. اور میں آپ کو پورے شعور سے کہہ سکتی ہوں کہ سیرت کے اس سفر کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ اس سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی نا وہ رسمی تھی. عادتاً جیسے ہم اپنے ماں باپ کے بارے میں کہہ دیتے ہیں، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارے میں بھی کہتے ہیں ہمیں محبت ہے. لیکن جب ہم کسی کے ساتھ رہتے ہیں، کسی کو جانتے ہیں، تو اس کے ساتھ پھر محبت کا انداز فرق ہوتا ہے. فزیکلی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نہیں دیا، ہم مانتے ہیں کہ ہم آپ سے تقریباً 1450 سال بعد دنیا میں بھیجے گئے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ یہ 1450 سال یعنی اتنی صدیاں بیچ میں رکاوٹ نہیں بنتی. آج بھی ہم دیکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھنے کو دل کرتا ہے اور ان کو ہم اپنے قریب محسوس کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن بھی بہت دیا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پہ خوبصورت بنایا تھا. یہ کیوں بنایا تھا اس کو سمجھ لیجئے. دیکھیے انسانی طبیعت مائل ہوتی ہے اچھی چیزوں کی طرف. کیا ہم کسی کا اچھا کپڑا دیکھ کر اس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے؟ ریگارڈ لیس آف دیٹ کہ ہمیں ملے نہ ملے، ہم وہ پہنے نہ پہنے، لیکن اچھی چیز سب کو اچھی لگتی ہے. آپ باہر جاتے ہیں تو نیچر کے خوبصورت سین آپ کو نظر آتے ہیں نا، اچھے لگتے ہیں، موڈ اچھا ہو جاتا ہے. اسی طرح اچھا کھانا دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آپ کھائیں کم کھائیں، خود بنائیں نہ بنائیں، خوشی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے کوئی حجت نہیں باقی رکھی کہ جو دین کی طرف بلائیں ان کی کوئی ظاہری بات. مثلا آپ دیکھیں نا، ایک شخص سے دین کی بات کر رہا ہے، اس کے چہرے پہ داغ ہے یا وہ نابینا ہے یا اس کا چہرہ ٹیڑھا ہے، کچھ بھی مثال لیں، قدرتی طور پہ جو سننے آئے گا، جو دیکھے گا، جو بیٹھے گا، اس کو وہ چیز اریٹیٹ کرے گی. ہاں بہت زیادہ سنسیئر ہوگا اور یہ سنسیریٹی آتے آتے ٹائم لگتا ہے. نئے لوگوں کو جو چیز اٹریکٹ کرتی ہے نا وہ دین کی طرف بلانے والے کا ظاہری حسن اٹریکٹ کرتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی آپ کی اچھی شکل سے متاثر ہو کے آپ کے پاس آ جائے، کوئی آپ کے اچھے کپڑوں سے متاثر ہو کے آ جائے، کوئی آپ کے یہاں اچھے کھانے کھلانے کو دیکھ کر خوش ہو کر آ جائے. آہستہ آہستہ جگہ بنتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری خوبی دی. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو آدھی دنیا کا جو حسن دیا گیا، یہ ایک حدیث ہے. تو بعض کہتے ہیں کہ حضرت یوسف کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آدھا حسن دیا گیا، یعنی آپ حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک بوڑھی تھی جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پایا ہوا تھا، تو اس کے بیٹے نے اسے کہا کہ اماں یہ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، آپ کی شکل و صورت کیسی تھی. یعنی جیسے آپ خود نہ کسی کو ملیں لیکن کوئی مل کے آئے تو آپ پوچھتے ہیں نا کہ وہ دیکھنے میں کیسے ہیں، ان کا رنگ ڈھنگ کیسا ہے، ان کا کیا ہے. تو وہ بڑھیا تھی کہنے لگی کہ تم کیا پوچھتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، کیا تم نے اس کو دیکھا ہے کس طرح سے؟ کہنے لگیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چاند کے سامنے کوئی رکھتا، یعنی چاند کی روشنی میں ایک صحابی اپنا ذکر کرتے ہیں کہ ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ میرے پاس تھے اور چاند بھی تھا، تو میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا اور سوچتا کہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا چاند. اور اس غور و فکر کا جو نتیجہ میں نے نکالا وہ یہ تھا، آپ کے چہرے کی چمک زیادہ تھی. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے तो उनके चेहरे पे ऐसी खूबसूरत चमक और खूबसूरती आ जाती कि हमें ऐसे लगता कि आप पूरी तरह से चमक रहे हैं। इस तरह से आपका चेहरा था। बद्रे मुनीर किसी ने ऐसे ही नहीं कहा, कुरान ने सिराजे मुनीर कहा है। आप हिदायत का सूरज चांद भी थे, लेकिन हकीकत है कि इसके बाद आप दूसरी तरफ भी खूबसूरत थे। ज़ाहरी खूबसूरती थी नबी सल्लम की। आपको पता है बहुत सारे लोग मक्का में सिर्फ नबी सल्लम की एक झलक देख के मुसलमान हुए थे। ये भी आपका मुजज़ा है। अब्दुल्ला बिन सलाम जो कट्टर यहूदी थे, बहुत खिलाफ आपके बातें सुन चुके थे। नेगेटिव प्रोपेगंडे का असर होता है, कुछ लोग तो ऊपर ही नहीं चढ़ेंगे, कहेंगे ये लोग पता नहीं कौन है, नहीं, हम इनकी बात नहीं सुनते, ऐसा होता है ना। इसी तरह जब नबी सल्लम ने मक्का में काम करना शुरू किया तो कुछ लोगों ने आपके खिलाफ लोगों को इतना भड़का दिया कि उसकी तो बात ही ना सुनना, वो तो जादूगर है, वो तो हैप्नाटाइज कर देगा, और कुछ इसी किस्म की बातें। तो फैल दौसी एक सहाबी हैं, वो अपना किस्सा सुनाते हैं कि मैं हज के इरादे से मक्का में आया, और ये वही दिन थे कि जब नबी सल्लम ने नबूवत का दावा किया हुआ था। तो मक्का वाले इतने अपसेट थे आपके इस दावे पे कि उन्होंने बाहर से आने वाले लोगों को ये यकीन दिलाना शुरू कर दिया कि हमारे शहर में आजकल एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा जादूगर आया हुआ है, और जो बंदा उसकी बात सुनता है उसके ऊपर उसका असर शुरू हो जाता है, तो तुम बात ना सुनना। कहते हैं कि मैं इतना डर गया कि मैंने अपने कान में रुई डाल ली कि अल्लाह ना करे मेरे ऊपर भी उसके जादू का असर चल जाए। अब जब मक्का में आए तो एक आध दिन गुजर गया, अल्लाह ने जिसको सुनाना होता है अल्लाह सुना देता है। कहते मैंने एक दिन देखा कि एक शख्स है, वो हरम में खड़ा कुछ पढ़ रहा है। मेरे दिल में आया कि हो ना हो ये वही शख्स होगा, नया चेहरा लगता है, तो मैं इसकी बात ना सुनूं। लेकिन फिर कहते मेरे दिल में ख्याल आया कि क्या हुआ, मैं को बच्चा हूँ, खुद शायर भी थे ये, बहुत बड़े सरदार थे। कहा क्या भला मैं बच्चा हूँ जो उसकी बातों में आ जाऊँगा, लो मैं सुन के तो देखूँ वो कहता क्या है। कहते हैं कि जब मैंने उनके चेहरे को देखा तो मेरे अंदर कुछ हुआ, और जब मैंने उनका कलाम सुना जो वो पढ़ रहे थे तो मेरे एक कान से रुई निकली, फिर उसके बाद दूसरे कान से मैंने रुई निकाली, और मैंने जब उस कलाम पे गौर किया तो मैंने कहा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये नबी सल्लम का मोजज़ा था। अल्लाह ताला के नबी के अंदर ज़ाहरी अट्रैक्शन बहुत थी, खूबसूरती बहुत थी। इनका हाल हुलिया हम बुक के साथ पढ़ेंगे, इसलिए डोंट वरी, आप नोट नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है। सिर्फ ये देख लीजिए कि नबी की उम्मत को आज कैसे होना चाहिए। आज मेरे आपके लिए भी एक चीज़ क्राइटेरियन है, क्या कि आप और मैं जिस नबी की उम्मत हैं, हमें देखकर लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं या हमें देखकर इस्लाम से दुश्मन हो रहे हैं। ये बात आपने कई दफ़ा सुन चुके होंगे कि इस्लाम कुछ और है और मुसलमान कुछ और है, और ये भी किसी नॉन मुस्लिम का ही कॉल है कि मुझे वो कुरान दो जिस पे तुम मुसलमान अमल करते हो। फिर आप देखिए कि एक ज़ाहरी हाल हुलिया की बात हो रही है ना, तो मैं थोड़ा सा आपके साथ इसको भी खोलना चाहती हूँ। हम कहते हैं कि नबी सल्लम बड़े खूबसूरत थे, आप इसमें उनकी दाढ़ी की डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, घनी दाढ़ी थी, बुशी, बहुत थिक दाढ़ी थी, काले बाल थे, आपकी आंखें मोटी थी, लंबी थी, आपकी पलकें लंबी थी, आपका रंग गोरा वाइट जिसको सफ़ेद कहते हैं वो नहीं, अरब लोग जो ना सफ़ेद रंग के लिए, ये जो आज हम जिसको वाइट पीपल कहते हैं वो नहीं होता, येलोइश कलर को वाइट कहते थे। यानी नबी सल्लम के रंग में चमक थी, गंदमी रंग था लेकिन उसमें एक चमक थी, सफ़ेदी माइल था लेकिन गंदमी था। आपका शाना चौड़ा था, आपका पेशानी चौड़ी थी, आप यहाँ से ब्राइट शोल्डर ब्रॉड थे आपके, आप चलते थे तो ऐसे लगता था ज़मीन लिपट रही है, यानी आपके चलने का अंदाज़ा कि आप तेज़ चलते थे, और तेज़ चलना चाहिए ये सुन्नत है, और ऐसे लगता था कि ज़मीन आपके लिए नरम कर दी गई है, जैसे ऊपर पहाड़ी से कोई उतरता है ना, यूँ रोल डाउन होना, इस तरह से आप चलते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुबहान तआला ने ये सारी ज़ाहरी खूबियाँ क्यों दी कि लोग जब आपको मक्का और मदीना की गलियों में चलता फिरता देखते थे ना, तो वो वाकई इस चीज़ को महसूस करते थे कि इसमें कोई अनयूजल बात है। आज भी तो देखें ना, आप आर्टिस्टों को देख लीजिए या जो स्क्रीन पे बड़े बड़े चेहरे आते हैं, लोग उनकी ज़ाहरदारी से मुतासर होते हैं कि नहीं होते। तो अल्लाह ने अपने नबी को भी ये बातें अता की थी। एक सहाबी थे अमर, वो कहते हैं कि तुम्हें रोना चाहिए। क्या यानी किस बात पे रोना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत आज इतनी हो रही है? यानी ये उनके दौर की कहानी है, आज के दौर में आप और मैं देखें तो पता नहीं हम इसको कैसे देख लें कि जब लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर रहे थे ना, लेकिन जब कोई उनके सामने आ जाता था तो उसकी मुखालफत ख़त्म हो जाती थी, उसकी दुश्मनी ख़त्म हो जाती थी। आज इससे क्या पता चलता है कि मुझे आपको नबी सल्लम का असल रूप लोगों को दिखाना चाहिए। देखिए स्टोरीज तो सब पढ़ते हैं, आप लोगों से कहें मत मुसलमान बनो, डोंट बी मुस्लिम, इट्स ओके, ठीक है। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जी आप इस्लाम कबूल ना करो। आप स्टोरी सुनते हैं ना, टारजन की कहानी आपने पढ़ी, मिकी माउस तक की कहानी आपने सुन ली, गुलूकाराओं के हालात, जिंदगी अदाकाराओं के, क्रिकेटर्स के, सुनते हो ना, तो तासुब की क्या बात है। आओ ज़रा एक दफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को भी देख लो। आप देखेंगे कि नबी सल्लम की ज़ात के बारे में जानकर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस्लाम की तरफ आएंगे। सिर्फ बात यह है कि मुझे आपको इसको पेश करने की ज़रूरत है, आप और मैं किस तरीके से इसको लेकर चलते हैं, वरना बात नहीं बनेगी। नबी सल्लम के जो पास करीब आने वाले लोग थे ना, वो यंग्स थे, बाप दुश्मन थे। आप देखिए कि अबू तालिब मुस्लिम नहीं हुए, हज़रत अली मुसलमान हो गए। अबू जहल मुसलमान नहीं हुआ, इकरमा मुस्लिम हो गया। और ये एक से ज़्यादा मिसालें मौजूद हैं। वजह क्या है? यूथ जो होती है ना, वो अपने दिमाग से सोचती है, वो रिवायात की मुकल्लद नहीं होती। और वो नबी सल्लम को ख़ुद जान के देखते थे कि इस शख्स में कोई बुरी बात नहीं है, आप क्यों बुरा कहते हैं उनको, हमें तो उनमें कोई बुराई नहीं दिखती। और यूथ का एक अपना कॉन्फिडेंस होता है, वो कहते हैं इट्स ओके, जो भी आप कहेंगे वो होगा, हमें तो ऐसी कोई गलत बात नहीं लगती। फिर आप देखिए कि सबसे बड़ी गवाही किसकी होती है जो आपके करीब होता है। नबी सल्लम जब मक्का से मदीना तशरीफ़ लाए तो उम्मे सुलैम नाम की एक औरत थी, 10 साल का अपना बेटा अनस उसका नाम था, उसको लेकर आई। कहने लगी कि नबी सल्लम, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ये बच्चा आपके करीब रहे, आपकी खिदमत करे, आपके वज़ू का पानी रखे, आपके घर के छोटे बड़े काम कर दे, और आप इसको दुआएं दें और इसकी तरबियत करें। हज़रत अनस कहते हैं कि मैं नबी सल्लम के साथ कितने साल रहा। देखिए मदीना गए तो आपके पास आए ना, वो 10 साल के बच्चे थे। जब नबी सल्लम की वफ़ात हुई तो हज़रत अनस की उम्र कितनी हुई होगी? 23 साल, 10 और 13, 23 साल। कहते हैं मैंने जितना अरसा नबी सल्लम के साथ गुजारा, और बच्चा होने के नाते मेरे से गलतियां होती थी, आप कुछ कहते मैं वो ना करता, कुछ कहते मैं भूल जाता, कहते कुछ करता कुछ, लेकिन मैंने इन 13 सालों में आपकी ज़ुबान मुबारक से उफ़ तक का लफ्ज़ नहीं सुना। उफ़ नागवारी के इजहार का सबसे हल्का दर्जा होता है, हल्का दर्जा होता है। अब आप बताइए, घर की गवाही बड़ी होती है कि दूर की गवाही बड़ी होती है? जो लोग आपके साथ हों, जो आपके साथ उठे बैठे, वो आपके मामले में किस तरह बात करते हैं, ये ज़्यादा अहम बात होती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने किरदार भी बड़ा खूबसूरत दिया था। आप जॉली भी थे, मजाक भी करते थे, लेकिन झूठ नहीं बोलते थे, मजाक और मजाक में फ़र्क करते थे। एक दफ़ा एक बूढ़ी औरत आपके पास आई और कहने लगी कि नबी सल्लम दुआ कीजिए कि मैं जन्नत में चली जाऊँ। तो आपने कहा कि जन्नत में तो कोई बूढ़ी औरत नहीं जाएगी, तो वो रोने लग गई। आपने कहा कि रो नहीं, बूढ़ी औरतें जवान बनाकर जन्नत में भेजी जाएंगी, यदि तुम्हारा ये बुढ़ापा ख़त्म होगा और तुम जवानी की हालत में होगी। अब आप देखिए, झूठ तो नहीं है ना इसमें, कहा सच, लेकिन दूसरी तरफ बात बदल गई। एक किसी शख्स को कहा कि कल मेरे पास आना, मैं तुम्हें ऊँट दूंगा। अगले दिन वो गया तो कहा, जी अल्लाह के नबी आपने कहा था ऊँट दूंगा, कहा मैं ऊँट का बच्चा दूंगा। वो कहेंगे ये क्या बात है, आपने तो कहा था ऊँट दूंगा, फिर आप आज ऊँट के बच्चे की बात कर रहे हैं, ये तो ज्यादती है, यानी वो बड़े ऊँट की उम्मीद लगा रहा था, उसको छोटा ऊँट मिल रहा है। तो आपने हंस के कहा, क्या हर ऊँट ऊँट का बच्चा नहीं होता? अब आप मुझे बताएं कि ये छोटी बात है कि बड़ी है? आप बोरिंग नहीं थे, यानी मैंने जितना पढ़ा है, इसको शमाइल तिरमिज़ी कहते हैं और हम एक पूरी नशिस्त इस पर करेंगे। शमाइल मीन अपेरेंसली, अपेरेंटली, आपका उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना। साहबा कहते हैं कि जो नबी सल्लम से दूर होता था ना, यानी दूर के लोग, वो आपको बहुत बारोब समझते थे, डरते थे, कांपते थे, लेकिन जो शख्स जितना आपके करीब होता जाता था ना, तो वो आपको बड़ा सॉफ्ट पाता था। और एक और कॉमन खूबी थी अल्लाह के नबी की, हर बंदा आपके बारे में ये सोचता था कि नबी सल्लम को सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे है। बात समझे? यानी मैं अक्सर सोचती हूँ इस बात को कि पब्लिक डीलिंग एक बहुत बड़ा घोर है, 24 घंटे में से शायद 20 घंटे तो हम इन्हीं चीज़ों पे बातें करते रहते हैं ना, मैनेजमेंट इश्यूज, फलां बातें ही फलां बातें, लोगों से कैसे डील करें, कैसे कायल करें, लोगों को कैसे माइल करें। आप यकीन करें कि नबी सल्लम की पूरी ज़िंदगी को देख लेना तो आपसे ज़्यादा बेस्ट पब्लिक डीलिंग किसी को नहीं आती थी। हज़रत आयशा कहती हैं और बाकी अजवाज भी कहती हैं कि आप जब घर में आते तो हमारे साथ कामों में शामिल हो जाते। एक मौके पर अल्लाह के नबी की एक बीवी दूसरी बीवी के साथ कुछ मजाक कर रही थी, क्या आटा गूंथते गूंथते उसने पकड़ के उसके मुंह पे आटा मलना शुरू कर दिया। ज़रा देखिए आज सौखनों के ऐसे लाड हैं, बहनों के नहीं है, आपके मुंह पे को आटा मले हैं तो आप क्या कर दें। तो जब एक ने मला ना तो दूसरी रोने लगी, तो आपने कहा रो क्यों रही, उठो तुम भी पकड़ कर उसके मुँह पर मल दो। आज के मर्द हैं ऐसे, अब कहेंगे मौलवी साहब घर में ये हरकतें करते हैं, पकड़ो इनको। ही वॉज़ वेरी लाइट पर्सन, वेरी लाइट माइंडेड, हल्के फुल्के, रिलैक्सिंग। साहबी कहते हैं कि नबी का हाथ हाथ में आता था तो ऐसे लगता था किसी ने रेशम का गोला पकड़ लिया, इतने नरम हाथ थे। आपका चेहरा गोल था, थोड़ा सा ओवलिश, यानी नीचे से थोड़ा सा लंबा था लेकिन ऊपर था, और स्या आंखें थी बिल्कुल। एक साहबी हैं, कहते हैं कि मुझे दुनिया की सारी चीज़ों में से सबसे खूबसूरत जो चीज़ लगती है वो लगती है कि मैं नबी के सामने बैठूँ और उनको घूरता रहूँ। अब आप देखिए कि मर्द तो ऐसी बातें अक्सर करते भी नहीं है ना, कि पास बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं। अब एक इतना रीज़नेबल, इतना एक समझदार बंदा जो है वो ये कहता है कि मेरा दिल करता है कि मैं नबी को देखूं, तो फिर देखते होंगे। कहा लेकिन मैं देख नहीं सका। हम जब आपकी महफिल में होते थे तो हमारे दिल पर एक हैबत तारी होती थी, हम बेतकल्फ़ी के बावजूद आपके साथ एक फ़र्क महसूस करते हुए आपको देख नहीं पाते थे। हम जब आपके पास होते थे तो हम इधर उधर देखते थे, आपके बिल्कुल सामने नहीं बैठते थे, लेकिन दिल ये करता था कि मैं आपको देखूं। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने आपसे ज़्यादा हम्बल चेहरा दुनिया में किसी का नहीं देखा। आज हमारे यहाँ ये जो एक दीन के नाम पे कॉन्सेप्ट बन गया है ना, गुस्सा भवें तनी हुई और मूछों पे बल देते हुए और डंडा हाथ में टक 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 टक, अब्बा जी आ गए हैं दरवाज़ा खोल दो, सारे छुप जाओ, कोई का चारपाई के नीचे, ये मौलवी साहब आ गए जी, मास्टर साहब आ गए। अल्लाह के नबी ऐसे नहीं थे, वेरी सॉफ्ट और ईजी गोइंग थे, बहुत ईजी गोइंग थे। आपका जो चेहरा था ना बहुत फ्लैशी नहीं था, गोश्त नहीं था बहुत ज़्यादा चेहरे पे, और ना बहुत ज़्यादा सूखा हुआ चेहरा था। आपके जो जिस्म पे बाल थे ना वो भी बिल्कुल एक लकीर की तरह थे, यानी आमतौर पे मर्दों के जिस्म में जिस तरह बाल होते हैं, अल्लाह के नबी के जिस्म पे इतने ज़्यादा बाल नहीं थे। और एक बिल्कुल नाफ तक नीचे जो एक बालों की लड़ी जाती है वही जाती थी। और सहाबी कहते हैं कि नबी सल्लम का चेहरे पे जो दाढ़ी थी वो यूं खिली होती थी। मैं जब ये सारा पढ़ रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि आज हमारे यहाँ खूबसूरत मर्द का तसव्वुर क्या आता है, इल्ला माशाल्लाह। बस एक औरत को और मर्द को एक साथ बिठा दें तो पता ही ना चले कौन औरत है कौन मर्द। हमारे जेब में खूबसूरती है, देखिए आप जो मर्जी समझे लेकिन मुझे पता है कि मोस्टली एक हैंडसम मैन का तसव्वुर क्या आता है, क्लीन शेव है कि नहीं, सूटेड बूटेड। चले कोई मॉडर्न है वो कहे कि मुझे थ्री पीस सूट नहीं चाहिए, मुझे फटी हुई जीन वाला बंदा अच्छा लगता है, घुटनों से फटी हुई है। और क्या आता है, गले में चेन, इधर एक ब्रेसलेट, शोल्डर पे कैमरा, और भी बता दें कुछ अपने ख्वाब बता दें, कैसे लड़के अच्छे लगते हैं आपको हा? हमारे तसव्वुर में क्या आता है, खूबसूरत मर्द कौन सा होता है, यही कुछ आता है। आप देखिए हीरो सारे यही होते हैं, लोग इस पर आते हैं, और मुझे तो गड़बड़ होने लगती है कि ये औरत है कि मर्द है। लेकिन नबी का जो हुसन पढ़ते हैं, आप देखिए अरबी में दाढ़ी को लही कहते हैं, लहश कहते हैं, और लहश का मानी क्या होता है, हदीस में एक लफ्ज़ में आता है कि अपने चेहरों को मुजयन करो दाढ़ी से, जीना, खूबसूरती है ये। अब नबी सल्लम खूबसूरत है कि नहीं, चलिए ज़रा माजरत के साथ अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे, और नबी सल्लम तो वैसे ही माइंड नहीं करेंगे, मुझे पता है कि वो उनका मिजाज बड़ा सॉफ्ट था। आप ज़रा नबी सल्लम का आज का मॉडर्न रूप लाइए अपने जहन में, क्लीन शेव आते, तो फिर हमें अपने मर्द क्लीन शेव क्यों अच्छे लगते हैं? क्या हमें क्लीन शेव एक वो बिल्कुल छिला छिलाया मर्द अच्छा लगता है? एक लड़की ये कह सकती है कि मैंने दाढ़ी वाले के साथ शादी नहीं करनी, ये दाढ़ी हो तो फिर शादी के बाद रख ले, ये तो मुझसे बहुत बड़े लगेंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच में मांग निकालते थे, लंबे बाल थे यहाँ से थोड़े से, और आप देखिए कि उनकी अदाएँ कितनी सादगी वाली थी, केयरलेस ब्यूटी, शलवार टखनों से ऊंची रखते थे, क्या आप कहते हैं ये तो मौलवी लगता है। अब आज जो लफ्ज़ मौलवी है, जो हमारे कॉन्सेप्ट है, अब आपकी बेटी का रिश्ता आ जाए, जिस दिन रिश्ता है, क्या आप लड़के के क्लीन शेव होने को खूबसूरती कहेंगे या बदसूरती? हज़रत आयशा के तसव्वुर लाइन कैसी आती हैं, कहने को भी नहीं दिल करता कि जिन हुलियों में आज बच्चियाँ बाहर जाती हैं, आयशा ऐसे जा सकती थी? 18 साल की तो थीं टोटल जब बेवा भी हो गई। 15-16 साल की एक बच्ची आज किस हाल हुलिये में बाहर जाती है? क्या हज़रत आयशा, खतीजा और हफ्सा और जुवेरिया इस तरह जा सकती थी? यह सीरत मुझसे आपसे ये तकाजे भी करती है कि हम अपनी शक्ल सूरत नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी लुक्स और अपनी पर्सनैलिटी को बदल सकते हैं। ये सिर्फ़ एक कॉन्सेप्ट है, और आपको पता है कि इसके लिए लोगों ने कितनी मेहनतें की हैं, ये परसेप्शंस देने के लिए। आप इन मुसलमानों के उरूज की कहानियाँ पढ़ लें, 1000 साल जो मुसलमानों का उरूज था ना, आप हिस्ट्री की कोई बुक खोल लें, कोई नावल देख लें, कोई पुरानी फिल्म देख लें, कोई ड्रामा देख लें, हमेशा मर्दों की दाढ़ी दिखाते हैं। अभी हमारे जो ट्रैवल गुजरा है ना अभी ट्रिप का, तो सारे एक दिन वो ड्राइवर के साथ बातें कर रहे थे, तो कहने लगे, जो बात का खुलासा था वो मैं अपने लफ्ज़ों में बताती हूँ, कहने लगे कि लुक, इफ़ जीसस विल कम इन दिस वर्ल्ड नाउ, हाउ ही विल लुक लाइक मुस्लिम। मतलब अगर हज़रत ईसा दुनिया में आए तो तुम्हारा क्या ख्याल है वो कैसे दिखने में लगेंगे? दाढ़ी है ना उनकी? कहने का हाँ। उनका तस्वीरों का जो भी उन्होंने रूप बनाया उसको देखे तो वो किससे मिल रहा है आज के दौर में? मुस्लिम से मिलता है। फिर आपने कहा कि अगर मैरी दुनिया में आ जाए फॉर एग्जाम्पल, तो कहेंगे नहीं मैरी विल नॉट कम। इन्होंने कहा यस शी विल नॉट कम, बट अगर मैरी दुनिया में आ जाए तो कैसी दिखने में लगेंगी? हाउ शी लुक लाइक्स, लुक लाइक मुस्लिम। लंबा सा दुपट्टा, आप देखिए कि मैरी को तो फुल स्लीव्स वाले कपड़ों में दिखाते हैं, क्या मैरी आज की नॉन मुस्लिम लड़कियों की तरह दिखेंगी? शी विल लुक लाइक मुस्लिम। दैट इज़ दी रियलिटी ऑफ इस्लाम, कि हर मज़हब के जो नबी थे या पिछले दौर के जो लोग गुजरे थे वो सारे मुसलमान थे। तो आज ये जो क्रिश्चियनिटी का रूप जिसने बनाया, और मैं बहुत सोच के बाद कहूँगी कि आज हम मुस्लिम्स ने जो खूबसूरती और बदसूरती का मेयार बना लिया ना, जो ये मैंने इशारे किए हैं आपको माजरत के साथ, ये नॉन मुस्लिम कल्चर बल्कि क्रिश्चियन कल्चर से मुतासर होके किए। क्या हमारे ट्रेडिशन में लड़के की शादी पे, चाहे बरात पे, अब बरात में चूंकि उसने भी दुल्हन से मैच होना होता है, और दुल्हनों को अभी तक तो मैंने शादी वाले दिन पैंट कोट पहने नहीं देखा, इल्ला माशाल्लाह को अगले 10-15 साल में दुल्हन का भी कोई वेडिंग ड्रेस पैंट शर्ट ही बन जाए तो बन जाए, आई डोंट नो। तो अब दूल्हा ने भी शेरवानी पे काम शाम करवाना ही है, वो तो शलवार कमीज पहनेगा, चाहे वो 50,000 की बने या 60 की बने, कुछ भी बने। लेकिन क्या 3-पीस सूट पहनना और ख़ास तौर पर वलीमे के ड्रेस के साथ, यानी ये एक हमारा कल्चर नहीं बन गया? जी मुझे ये पहनना। मैं देखिए कपड़ों के ख़िलाफ़ नहीं, वल्लाही इस वक्त मेरा मौजू पर्दा या कपड़े हुलिया नहीं, मैं नबी से प्यार की बात करती हूँ। हम क्यों इतने डिफरेंट लगते हैं आज? असल ये सोचने की बातें, यानी मेरा मियाँ अगर इस तरह के हाल हुलिये में, जो नबी का हाल हुलिया नहीं, तो मुझे कहना पड़ेगा कि अल्लाह ने जो दे दिया लेकिन ही शुड बी चेंजिंग, इसको कुछ बदलना पड़ेगा। हर रोज़ सुबह उठ के एक जंग लगती है ना, बाल कहते हैं हम आएंगे, हम कहते हैं हम काटेंगे। सुबह उठते ही तीर तलवारों से दिन का आगाज़ हो, जिनका कट लगा कर अपने आप को ज़ख्मी कर कर जाएं, और हम ये सोचें कि ये तो हैंडसमनेस है। अब एक मर्द आधी दाढ़ी बढ़ी हुई है, शेप बढ़ी हुई है, और इस तरह उठ के जाके अपने ऑफिस में बढ़ जाए, लोग कहेंगे आर यू सिक, आर यू ओके। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये इस्लामी कॉन्सेप्ट नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खूबसूरती भी थी और ज़ाहरी भी थी। अच्छा चले, मैं इसको थोड़ा सा आपको मज़ीद क्लोज सर्कट में दिखाऊँ। आप सऊदी अरब जाते हैं उमरे पे, हज पे, 98% सऊदीज की दाढ़ी होती है, बदसूरत लगते हैं उनके काउंटर्स पे बैठे हुए और जहाँ भी है। ठीक है, हमें औरतों को ज़रूरत नहीं है किसी मर्द को देखने की, लेकिन नज़र पड़ती है। चलिए कारी, डिफरेंट कारीज को आप देखते हैं, कभी यूट्यूब पे उनकी सुनते होंगे, स्पीकर्स हैं, खतीब हैं, बदसूरत लगते हैं। तो बाहर वालों को छोड़ दीजिए, आप और मैं जो इस क्लासरूम में बैठे ना, यहाँ अपनी नियत करें। आप बच्चियाँ तो अपने माँ बाप को कह दें हमें ऐसा चाहिए जैसे नबी थे। वो एक वाक्य भी आपने सुना होगा ना, कि एक शख्स एक दफ़ा नबी सल्लम के पास आया, कहा नबी सल्लम मेरी बेटी है तो मुझे शादी करनी है, जलबीब उसका नाम था, तो कहा कि शादी करनी है, अच्छा वो फलां घर है वहाँ चले जाओ, उनकी बेटी जवान है। पहले ऐसे होती थी शादियाँ, अल्लाह की बना आज जो हालात है, خون چوس لیا ان شادیوں نے ہمارا, اور میں سچ کہتی ہوں ہمارے اسلام کا رہا سہا رس ہماری شادیوں نے نوچا. ایک شادی ایک سال تک ہمیں ڈسٹرب رکھتی ہے, ہونے سے پہلے سے لے کر ہونے کے بعد تک, اور بعد تو اس کے بعد الگ باتیں ہیں. مائنڈ نہ کریے گا, سیرت پڑھ رہے ہیں کوئی مذاق نہیں ہے. اگر نبی کی شادیاں ایسی ہوتی نا تو وہ 10 سالوں میں صرف 10 شادیاں کرتے اپنی, پھر بیٹیوں کی شادیاں, پھر بچوں کی شادیاں. ہم نے تو ہر چیز کو ناسور بنا لیا. ہم انسانوں کو پوچھتے ہیں, خوشیاں اپنی نہیں دیکھتے, دوسروں کی دیکھتے ہیں, اگلے کو خوش کرنا ہے. اور کئی جگہ ظلم ہو جاتا ہے ہم سے, گناہ ہم قبول کر لیتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں ابھی نہیں کیونکہ ابھی ہماری تیاری نہیں ہے. لیکن آپ جو بات کہہ رہی ہوں وہ اس پہ غور کیجئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس طرح کی سادگی تھی. جنگ سے واپسی پہ شادی ہو رہی ہے, پتہ ہے آپ کو یہ بات, 2 جنگیں ایسی ہیں کہ جہاں سے جب واپس آئے تو وہاں سے واپسی پہ آپ کا نکاح ہوا. بات سنا رہی تھی دلبیب کی, کہنے لگا اللہ کے نبی شادی کرنا چاہتا ہوں, اور سیاہ رنگ کا حبشی تھا, باہر سے آیا ہوا تھا. اس دور میں لوگ گندگی نہیں رکھتے تھے, نکاح چلو جی رہ رہے ہیں پردیس میں آئے, اب ہمیں تو کسی کو ساتھ رکھنا ہی ہے نا, لیونگ ٹوگیدر نہیں, جائز طریقے پہ ضرورت محسوس ہوتی ہے. اور جب ایک مرد کہہ دے نا مجھے شادی کی ضرورت ہے تو ماں باپ کو ایک رات بھی نہیں گزارنی چاہیے ورنہ نقصان ان کا ہی ہوگا. کہا ان کے گھر چلے جاؤ, وہ فلاں کی بیٹی جوان ہے. اب جا کے پیغام دیا کون ہے, بیٹھو جی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا, نکاح کا ارادہ میں آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کر, نہ دیکھا نہ سنا نہ بات نہ جیت, کوئی نہ کہانی اگلی نہ پچھلی. اب ماں باپ تھے ذرا سوچ میں پڑی جاتے ہیں نا بندے کہ کیا دیکھے, کیا دیکھے جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں, نہ نصب کا پتہ ہے, پتہ نہیں کہاں سے آیا, اجنبی ہے اور رنگ بھی کالا ہے, قریش نسل سے بھی نہیں. تھوڑی سی اوپر نیچے دل میں نیت آئی کہ ہم یہاں رشتہ نہیں کریں گے. بچی سمجھدار تھی, کہنے لگی کہ آپ اس رشتے کو کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں, اس شخص کی نظر سے نہ دیکھیں, کس نے بھیجا اس کو دیکھیں. اگر یہ قریشی نہیں ہے تو جس نے بھیجا وہ کیا, قریش کیا لا نصب سے. یہ خوبصورت نہیں ہے تو جس نے بھیجا وہ کون ہے, دنیا کا سب سے خوبصورت انسان. 2-4 باتیں کی کہا, اچھا اگر تمہیں کوئی نہیں ہے مسئلہ تو ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, شادی کر دی. اور مدینہ میں دا موسٹ ہیپی, یعنی دا کیوپڈ کپل, اگر آپ انگلش کا یہ لفظ جانتے ہیں نا کیوپڈ کپل, جس کو اردو میں آپ کہہ لیں ہنسوں کی جوڑی, اس نام سے وہ جوڑی مشہور ہو گئی. اتنا پیار دل میں اللہ نے ڈال دیا, اور اس نے تجارت شروع کی, تھوڑے ہی عرصے میں مدینہ کا ایک کامیاب تاجر بن گیا. یہ ہے اصل اسلام. یہ سیرت پڑھنے سے زیادہ بات نہیں ہوگی, یہ تو چند دنوں کا کورس ہے, ختم ہو جائے گا, اور کوئی پہلا کورس تھوڑی ہے جو آپ زندگی میں کرنے لگے ہیں. عملی سیرتوں میں ڈھالنا ان چیزوں کو, پھر آپ دیکھیں گے کہ ہماری زندگیوں میں خوشی کتنی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایزی گوئنگ تھے, یہ بھی ایک آپ کی خوبی لکھیے گا. آپ کی ازواج کہتی ہیں کہ جب 2 چیزوں میں ایک میں اختیار ہوتا تو آپ آسان چیز کو قبول کرتے. مثال دیتی ہوں کہ آپ یہاں سے لے کر فرسک تک جانا چاہتے ہیں اور شدید گرمی ہے باہر, اور ادھر اتنے روڈ میں دھوپ ہے اور دوسری طرف چھاؤں ہیں, تو آپ دھوپ میں جائیں. یا سردیوں میں نکلے, ایک طرف پھسلن ہے اور ایک طرف سوکھی جگہ ہے, تو پھسلن پہ نہ چلیں, سوکھی جگہ پہ چلیں. آپ ایزی گوئنگ تھے, ریلیکسڈ ہوتے تھے اس ناطے سے کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں کے لیے مشکل نہیں ڈالتے تھے. آپ نے فرمایا کہ بشرو ولا تنفرو, لوگوں کو بشارتیں دیا کرو, نفرت نہ دلایا کرو. ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت آ گئی کسی صحابی کی کہ یہ لمبی بڑی نماز پڑھاتے ہیں, غالباً حضرت معاذ تھے. تو آپ نے فرمایا کہ معاذ, کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو؟ یعنی جب لوگوں کو نماز پڑھاؤ تو مختصر پڑھاؤ, جب خود پڑھنی ہے تو لمبی پڑھو. بہت انڈرسٹینڈنگ تھے, انگلش میں آپ کہیں فوراً لوگوں کے دل کی بات سمجھ جاتے تھے. اکثر لوگ یہ گواہی دیتے تھے اللہ کے نبی کے بارے میں کہ ہم جو سوچ کے آتے تھے نا, آپ بالکل پہلے سے وہ بات جانتے تھے. پھر آپ کیئرنگ تھے, محبت کرتے تھے. عائشہ کہتی ہیں جب کبھی میری طبیعت خراب ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح میری کیئر کرتے, وہ واقعہ میں جب میں بیمار ہوئی تو اتنی کیئر نہیں کرتے تھے. تو میرے دل کو یہ بات چبھتی تھی, اور بعد میں حقیقت کھلی کہ باہر تو اتنا طوفان اٹھا ہوا عائشہ کے خلاف, اس کا اثر تھا. پھر آپ دیکھیے صبر تھا آپ کے اندر, اس طرح کا صبر تھا کہ دوسرے کو خبر نہیں ہونے دیتے تھے حالات کے. ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کی دوپہر تھی, اس میں باہر نکلے. عربوں میں لوگ دوپہر کے وقت باہر نہیں نکلتے. جب باہر نکلے نا تو دیکھا تو عمر بھی ادھر سے آ رہے ہیں. عمر نے کہا اللہ کے نبی آج آپ کیسے باہر آ گئے؟ تو کہا मुझे भी उसी चीज़ ने निकाला है जिसने तुझे निकाला है। ये अंडरस्टैंडिंग लेवल देखिए, क्या घर में खाने को कुछ नहीं है? तो मैंने कहा कि बाहर जाके देखो। अल्लाह के नबी, आपको कैसे पता चला कि मैं भी भूखा हूँ? क्या बस पता लग जाता है? खैर, निकले वहाँ से, एक अंसारी ने देखा, उनको बुला लिया। दो तीन वाक़यात हैं, किसी में आता है कि एक अंसारी उनको अपने बाग में ले गया, चटाई बिछाई, अंगूरों का गुच्छा तोड़ के सामने रखा। बाज़ रिवायत में हज़रत जाबिर का वाक़या भी आता है, या एक और सहाबी, तो उनके पास एक ही बकरी थी। घर गए का बीवी से कि अल्लाह के नबी भूखे हैं, कुछ खाना चाहिए। वो बकरी से बाकी पेश किया। जब इतना कुछ हो के खाना सामने आया तो खाने लगे, तो आपने कहा कि या उमर, ए उमर, याद रखना, सुम्म लतुसलुन यौम इज़िन अनिन नईम। फिर उस दिन तुमसे नेमतों के बारे में सवाल होगा, फिर भी हिसाब होगा। हज़रत उमर ने हाथ से झटक दिया वो अंगूर। अल्लाह के नबी, इतने दिन के बाद मिल रहा है, इतनी मुश्किल के बाद मिल रहा है, फिर भी हिसाब होगा? कहा, हिसाब तो होगा। सोते किस पे थे? फूड़े बिस्तर पे सोते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में एक हुजरा बनाया था जो सिर्फ आपका अपना था, चबूतरा सा कह ले। वहाँ पानी की एक बोतल पड़ी रहती और नीचे जैसे खजूर की छाल होती है ना, उसका बिस्तर था। एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु गए तो अल्लाह के नबी लेटे हुए थे। आपको देख कर फ़ौरन उठ के बैठ गए। जब बैठे तो उमर ने देखा कि आपकी जिस्म के अंदर खजूरों के निशान पड़ गए हैं, तो उमर रोने लग गए। कहा, अल्लाह के नबी, आपके जिस्म पे निशान पड़े, मैंने तो कभी आपके जिस्म पे पहले निशान नहीं देखा। कहा, क्या आपके लिए नरम बिस्तर ना लगा दें? हम तो देखते हैं फलां फलां इतने आराम से रहते हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा, उमर, क्या तेरे दिल में अभी भी शक है, यानी कि मैं गरीब हूँ या मैं सच्चा नबी नहीं हूँ? और फिर आपने कहा कि दुनिया के बादशाहों के लिए ये दुनिया में है, मेरे लिए आखरत में होगा। और आपने उसी को पसंद किया। फरमाया, उमर, तुम दुनिया में चाहते हो कि आखरत में चाहते हो? हज़रत आयशा कहती है कि बिस्तर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो होता था, जिस पे सोते थे, बड़ा मोतदिल होता था, यानी बहुत फ्लफ़ी, नहीं कि उससे आँख ही ना खुले, और ऐसा भी नहीं है आम हालात में कि उसके ऊपर सोया ही ना जाए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल इस तरीके से अपने घर में रहते थे कि बस दफ़ा आपका जो हुजरे थे बीवियों के, वो ऐसे होते थे कि हज़रत ज़ुबैर हैं गालिबन, हज़रत आयशा के भांजे थे, हज़रत अस्मा के बेटे, और अस्मा कौन थी? हज़रत नबी सल्लम के फूफीजाद भाई ज़ुबैर की बीवी, तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर थे। बच्चों को आदत होती है आज खाला के घर रहना, चल पड़े। कहते हैं, मैं खाला के घर रहने गया, कमरा ऐसा था कि जब अल्लाह के नबी और उनकी अज़्ज़ौज लेटी तो कमरे में जगह नहीं थी, तो मैं उनके पाँव की तरफ लेट गया, जैसे वो सरांदी बरांदी नहीं कहते। इतनी सी जगह थी कि जहाँ मैं उनके साथ लेटा, उस जगह में इतनी जगह नहीं थी। और आप ये भी याद रखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी चावल नहीं खाए, सारी ज़िंदगी चावल नहीं खाए। मैदा, जिसके हम नान बनाते हैं, जिसके हम पिज़्ज़े बनाते हैं, सारी ज़िंदगी मैदा और नान नहीं खाया। चावल क्यों नहीं खाए? अरबों में चावल थे ही नहीं है। और छान वाली रोटी खाते, जौ के आटे की बारले सीट की रोटी खाते थे। हज़रत आयशा कहती हैं कि 6 हफ्ते गुजर जाते थे और नबी सल्लम गोश्त नहीं खाते थे। सहाबी ने सुना, वही जो उनके भांजे हैं, हज़रत आयशा के भांजों से बहुत बातें मिली हैं हमें, क्योंकि खाला भांजे बातें करते होंगे ना, वही बात में हदीसे बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहते हैं कि अल्लाह के नबी 6 हफ्ते तक गोश्त नहीं खाते थे, मैं भी नहीं खाऊँगा। कहा, क्या खाते थे? कहा, अस्वदान, काला पानी और खजूरें। का पानी काला कैसे? का जो मिलता था उसमें भी रेत होती थी। और ये खैबर के फतह होने के बाद की बातें हैं। आम दिनों में ठीक है, मानते हैं शुरू के 5-6 साल मुश्किल के थे। और आप याद रखिए कि जो लीडर होते हैं ना, उसका हमेशा मुकाम ऊपर होता है। सहाबा सबसे ज़्यादा नबी का ख्याल करते थे, आराम का, सोने का, खाने का, बैठने का, कि हमें तकलीफ़ हो जाए, इनको ना हो। इसके बावजूद जब सब कुछ हो गया था, मिल गया था, लोगों के घरों के चूल्हे जल गए, महाजरीन को भी अल्लाह ने असूदा कर दिया, इसके बावजूद भी आपका लाइफस्टाइल यही था। और आपका हाल क्या था कि जब आपके पास कोई आ जाता मांगने के लिए तो कभी मना ना करते? एक दफ़ा साहबा कहते हैं कि हमने देखा कि नबी सल्लम आए तो आपके जिस्म पे वो चादर थी जिसमें सुराख हुए हुए थे, यानी आपके कपड़े में छेद थे। इतने में किसी ने बाहर से अल्लाह के नबी को कोई तोहफा भेजा, बड़ी खूबसूरत चादर। अल्लाह के नबी अंदर गए और वो फटा हुआ कपड़ा उतार के वो नया जोड़ा पहन लिया। जब बाहर आए ना, تو ایک صحابی نے دیکھا تو کہا، اللہ کے نبی کتنی پیاری چادر ہے، آپ یہ مجھے دے دیں. آپ نے کہا اچھا. آپ واپس گئے، وہ چادر اتاری، دوبارہ وہی پھٹی ہوئی سوراخوں والی چادر پہن کے آئے اور وہ نئی چادر طے کر کے اس صحابی کو دی. اب باقی صحابہ دیکھ رہے تھے تو وہ ان کو لان تان کرنے لگ گئے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بندے کو نہ نہیں کی، تو تم سوچ کے بولتے. تو اس صحابی نے جو بات کی وہ بھی ذرا سنیے. کہنے لگے، اللہ کی قسم مجھے اس کپڑے کی حاجت نہیں ہے اور میں اس کو پہنوں گا بھی نہیں، لیکن یہ میرا کفن ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہن کے اتارا ہے نا، تو آپ کے جسم سے ٹچ کیا ہوا کپڑا، تم اس کو میرے کفن کی جگہ استعمال کرنا، شاید اس کی وجہ سے میں قبر کے عذاب سے بچ جاؤں. باتیں بہت سی ہیں، وقت پورا ہو گیا. میں اور آپ، ہم سب اپنا جائزہ لیں. ہم اب سیرت کی ان گلیوں سے گزرتے ہوئے کتنا محاسبہ کرتے ہیں، ہم کتنے شرمسار ہیں اور ہم کتنے خوش ہیں. ہر دور کے ایک تقاضے ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ اپنے اندر عاجزی رکھیے، نرمی رکھیے، چھوٹا پن رکھیے، اور اللہ کی نعمتوں کو تحدیث نعمت کے طور پہ استعمال کریں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.